नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के संस्करण में मैं आज हूं विनय सक्सेना आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
पहले बात करते हैं मुख्य समाचारों पर। भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच चल रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में देश के अलग अलग स्थानों पर घरेलू टीमें अपने अपने मैच खेल रही हैं। अमेरिका के कोलोराडो में चल रहे अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निशा और पार्थवी ग्रेवाल कल सेमीफाइनल में पहुंच गए, और भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने भारत को 233 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42 ओवर में 3 विकेट पर 221 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 49 ओवर और 5 गेंदों में 232 रन बनाए और उनकी पूरी टीम आउट हो गई। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3, प्रिया मिश्रा ने 2, रेणुका सिंह और साइमा ठाकुर ने 1-1 विकेट लिया। 3 मैचों की श्रृंखला में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे मैच में विजयी रहा। मोना जी, जीत के कगार पर तो हम पहुंच ही गए हैं, और स्मृति मंधाना ने बहुत अच्छा शतक बनाया है और हरमनप्रीत ने भी अर्धशतकीय पारी खेली है। सीरीज हम जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है
जी।
बट इस जीत के साथ ऐसा तो नहीं है कि जो कमियां नजर में आई हैं वो छुप जाएंगी और फिर सब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने मिसफील्डिंग बहुत करी है।
बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने मिसफील्डिंग बहुत की है, और अगर हम गेंदबाजी अपनी गेंदबाजी देखें तो 5 विकेट 88 रन पे लेने के बाद हमने 232 रन तक उन्हें जाने का मौका दिया, बड़ी पार्टनरशिप बनाने का उनको मौका दिया,
लूज छोड़ दिया उनको।
बिल्कुल, मैदान के आप चारों तरफ उन लोगों ने शॉट्स खेले हैं, और गेंदबाजों के प्रदर्शन से जरूर निराशा लगी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सबसे अनुभवी दो खिलाड़ी हैं, चाहे स्मृति मंधाना हो चाहे हरमनप्रीत कौर, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप, और एक जो परिपक्वता की बात करते हैं, मैच्योरिटी के साथ खेलने की, पारी को एंकर करने की जो हम बात करते हैं, वो आज देखने को मिला, क्योंकि पिछले दोनों मैचों में 5 और 0 रन पे आउट हुई थी मंधाना।
आलोचना से कहीं और हार से कहीं सीखा और बहुत जल्दी उभर किया है इस मैच में।
हाँ, देखिए भारत में है कि हम बिल्कुल बहुत ही जज्बाती हैं फैंस और बहुत जल्दी आलोचना करते हैं, लेकिन विश्व कप में भी जिस तरह से ग्रुप चरण में ही भारतीय टीम बाहर हो गई थी महिलाओं के, उससे कहीं ना कहीं ये दोनों खिलाड़ी, दोनों का सपना है विश्व कप जीतने का, और करियर के ट्वाइलाइट पे है, बहुत सीनियर खिलाड़ी और करियर के, हरमनप्रीत की अगर बात करें तो काफी सीनियर है, और शायद उनके करियर का ये ढलान है, और यहाँ जरूर उन्हें उम्मीद थी, निराशा हाथ लगी, तो ये सीरीज विश्व कप के बाद पहला ही मौका था खेलने का, और यहाँ पर वो इस सीरीज को जीतकर, खासतौर पे जबकि हमारी पुरुष टीम जो है वो टेस्ट श्रृंखला इसी न्यूजीलैंड टीम से हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड मॉरल बूस्टर का काम करेगी।
अब बात करते हैं घरेलू क्रिकेट श्रृंखला यानी रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में देश के अलग अलग स्थानों पर घरेलू टीमें अपने अपने मैच खेल रही हैं। सभी टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है, हर ग्रुप में 8 टीमें हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए मैच के आखिरी दिन आज मेघालय को 10 विकेट से हराकर बोनस अंक ले लिया। ग्रुप ए के दूसरे मैच में अगरतला में मुंबई और त्रिपुरा के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। गत चैंपियन मुंबई को पहली पारी की बढ़त के आधार पर 3 अंक मिले। बड़ौदा और उड़ीसा के बीच खेले गए मैच में बड़ौदा ने उड़ीसा पर 1 पारी और 98 रन से जीत दर्ज की। एक अन्य मैच में जम्मू कश्मीर ने सर्विसेज की टीम पर 1 पारी और 25 रन से जीत दर्ज की। विदर्भ ने आज रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी के मैच के चौथे और अंतिम दिन उत्तराखंड पर 267 रन की बड़ी जीत दर्ज की। पिछली उपविजेता विदर्भ को इस जीत से 6 अंक मिले। विदर्भ की टीम 3 मैचों में 3 जीत से 18 अंक के साथ ग्रुप तालिका में शीर्ष पर है। उत्तराखंड 3 मैचों में 6 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। विशाखापत्तनम में खेले गए ग्रुप बी के एक अन्य मैच में हिमाचल प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को पारी और 38 रन से हराकर 7 अंक हासिल किए। ग्रुप बी के अन्य मैचों में हैदराबाद ने पुदुचेरी को पारी और 50 रन से हराकर 7 अंक हासिल किया, जबकि गुजरात और राजस्थान का मैच ड्रॉ रहा। गुजरात ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर 3 अंक हासिल किए, जबकि राजस्थान को 1 अंक से संतोष करना पड़ा। ग्रुप सी के खेले गए मैचों में केरल और बंगाल का मैच ड्रॉ रहा। कर्नाटक ने बिहार को 8 विकेट से हराया। वहीं मध्य प्रदेश और हरियाणा के बीच भी मैच ड्रॉ रहा। उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच भी मैच ड्रॉ ही रहा। गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से दिल्ली ने आज रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के चौथे और अंतिम दिन असम को 10 विकेट से हराकर सत्र की पहली जीत दर्ज की। दिल्ली की टीम ग्रुप डी में 11 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। एक अन्य मैच में कोयम्बटोर में तमिलनाडु ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ फॉलो ऑन खेलते दूसरी पारी में 4 विकेट पर 264 रन बनाकर मैच ड्रॉ कराया। पहली पारी में बढ़त लेने वाले छत्तीसगढ़ को 3 अंक मिले। उधर जमशेदपुर में चंडीगढ़ ने झारखंड को 10 विकेट से हराया। इस जीत से उसे 7 अंक मिले। चौथे मैच में रेलवे ने सौराष्ट्र को 37 रन से हराया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
मोना जी, रणजी ट्रॉफी में जिन जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है या करते रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और जैसा कि अभी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस चल रही है जैसा आपने भी बताया अभी, तो क्या भारतीय चयनकर्ताओं की नजर इन खिलाड़ियों पर जाएगी और कुछ बदलाव भविष्य में हम देखें, या वही पुराने नाम, क्योंकि टीम की घोषणा हो गई 2 टेस्ट मैच हारने के बाद और वही नाम दिखाई दिए?
देखिए, मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि जब आप लाल गेंद के क्रिकेट के में खासकर टीम का चयन करते हैं तो आपको रणजी ट्रॉफी को ही आधार बनाना चाहिए। इतना रोबस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन हो ये रहा है कि अक्सर टीमों का चयन आईपीएल प्रदर्शन एक मानदंड बनता जा रहा है, लेकिन जो टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, वो आप 4 दिन 5 दिन के मैच खेल के ही आपको असली, जिसको टेस्ट कहते हैं, इसीलिए आपको अगर टीम में हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव चाहिए तो आपको एक चेतेश्वर पुजारा या एक अजिंक्य रहाणे भी चाहिए। जो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने बॉडी ब्लो झेले थे और एक एंकर की भूमिका लंबे समय तक डट कर खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो होता है वो कई बार मुझे लगता है ओवररेटेड रहता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बात, बल्कि ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप कैसे एंकर कर रहे हैं
टेस्ट क्रिकेट में, तो टाइम ऑन क्रीज ज्यादा मैटर करता है।
बिल्कुल बिल्कुल मैटर करता है। और ये 2 टेस्ट मैचों की जो 3 टेस्ट मैचों की न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले 2 मैच हुए, इसमें हमने हमारी बल्लेबाजी का हश्र देखा। 46 रन, 150 के आसपास रन, तो उस एंकर की कहीं ना कहीं कमी खल रही है। और जैसे आपने कहा कि रणजी टूर्नामेंट है, और मुझे बिल्कुल लगता है कि चयनकर्ताओं की नजरें इसमें जरूर होगी। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, टिककर खेल रहे हैं, लंबी पारी,
न केवल बैट्समैन बॉलर भी,
बिल्कुल बॉलर्स भी जिस तरीके का प्रदर्शन है, क्योंकि लंबे लंबे स्पेल फेंकने होते हैं। ये 4 ओवर का क्रिकेट नहीं है कि आपने 4 ओवर डाले और उसके बाद आप इंजर्ड हो गए, एनसीए में चले गए, लंबे समय आपका रिहैब चल रहा है, आप खेल नहीं पा रहे, तो स्टेमिना की भी असली परीक्षा होती है। और अभी तो बीसीसीआई ने ऐसा कर दिया है कि अगर आप ऑफ सीजन में है तो चाहे आप भारतीय टीम के लिए क्यों ना खेलते हो, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना ही। और विदेश में तो ये एक नॉर्म आम है कि अगर आप फ्री सीजन है, आप बिल्कुल इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं है, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही खेलना है। और अभी यहां पर 1-2 खिलाड़ियों को छूट दी गई है, लेकिन सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर है वो जब तक विराट कोहली को या रोहित शर्मा को अगर बॉलर है वो बॉल नहीं डालेगा, या अगर बैट्समैन है वो मोहम्मद सिराज या रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों का सामना नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे।
बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अगर हमारे खिलाड़ियों का सामना नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अमेरिका के कोलोराडो में चल रहे अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निशा और पार्थवी ग्रेवाल कल सेमीफाइनल में पहुंच गए। निशा ने इटली की वसालो मार्टिना को 5-0 से हराया। पार्थवी ने भी इटली की डेल अनमारिया को 5-0 से मात दी। कृष्ण पाल ने अल्जीरिया के मोहम्मद अब समद को हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा। प्रतियोगिता के आज तीसरे दिन भारतीय मुक्केबाज टी सुप्रिया देवी, ऋषि सिंह, सुमित, राहुल कुंडू और हेमंत सांगवान अलग अलग श्रेणियों में क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। जूनियर लेवल पे और अन्य स्पर्धाओं में तो हम जीत जाते हैं
जी,
बॉक्सिंग में
जी,
बट फिर ये प्रतिभाएं कहाँ चली जाती हैं?
बिल्कुल, यही जो ग्रूमिंग की जो हम बात करते हैं कि अगर एमसी मैरीकॉम, निकहत जरीन या लवलीना बोरगोहेन के बाद जो अगली जमात या लड़कों में भी जो अगली जमात के बॉक्सर हैं वो हमें तैयार करने, हम रोड टू एलए की बात करते हैं, 2028 ओलंपिक की बात करते हैं, तो इन्हीं प्रतिभाओं को जो अभी सब जूनियर खेल रहे हैं या अभी जूनियर खेल रहे हैं उन्हीं को आगे तक ले जाने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सपोजर, ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट खेलना जरूरी है। और एक आध टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट में नाम सामने आते हैं और फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है ऐसा कुछ करना होगा कि प्रतिभाओं को ट्रैप करने के लिए आपने बहुत सारी स्कीम्स है कि आप
जैसे क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ भी इन खेलों में अगर बेंच स्ट्रेंथ बने तो
पूल बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम पदक की बात करते हैं तो वही गिने चुने 3-4 नाम आप सामने आते हैं और उसके बाद अगर वहां से निराशा हाथ लगती है तो एक सिर्फ बात पदक की नहीं है, बात अगले जनरेशन के प्लेयर्स को इंस्पायर करने की भी है। तो जब तक आप ओलंपिक जैसे आयोजन में या एशियन गेम्स में मेडल्स नहीं दिखेंगे तब तक कोई अगली पीढ़ी के खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे। तो बिल्कुल जरूरी है कि एक बड़ा पूल बनाया जाए, अच्छे ट्रायल्स हो, कंपटीशन में भेजने से पहले जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हो, किसी के चयन की कोई गारंटी
ना हो, वो ज्यादा अच्छा है।
जी बिल्कुल।
और श्रोताओं, भारत ने न्यूजीलैंड को एक दिवसीय क्रिकेट मैच हरा दिया है। भारत ने 233 रन का लक्ष्य 44वें ओवर में 4 विकेट खोकर पूरा कर लिया और श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। स्मृति मंधाना ने शतक बनाया और हरमनप्रीत ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यहाँ सीरीज तो जीत गए हम, लेकिन फिर वो भी बात है कि अब आगे क्या।
देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी ताजा विश्व कप की हार को भुलाकर एक मॉरल बूस्टर सीरीज और एक बहुत अच्छी टीम से सीरीज हमने जीती है, चैंपियन टीम से सीरीज हमने जीती है, तो काफी अनुभवी खिलाड़ी है उस टीम में भी, तो एक आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। और खास तौर पे मैंने बार बार कहा कि जो आलोचना हो रही थी इन दोनों खिलाड़ियों की, स्मृति और हरमनप्रीत की, वो बिल्कुल कम होगी और ये बहुत अच्छा संकेत भी है दोनों के लिए।
अब बात करते हैं टेनिस की। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। एटीपी फाइनल्स का आयोजन इनाल्पी एरेना में 10 से 17 नवंबर तक होगा, जिसमें दुनिया की सिर्फ शीर्ष 8 जोड़ियां ही हिस्सा लेंगी। बोपन्ना और एबडेन ने लगातार दूसरे साल एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। बोपन्ना की नजरें अपने पहले एटीपी फाइनल्स खिताब पर टिकी हैं। वो इससे पहले 2012 में महेश भूपति और 2015 में फ्लोरिन मार्जिया के साथ मिलकर फाइनल में जगह बना चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले 2001 में एहसानुल्लाह कुरैशी के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट में जगह बनाई थी। रोहन बोपन्ना ने झंडा अब तक बुलंद रखा है।
देखिए, लोग कहते हैं कि 40 पार खिलाड़ी के खेलने की उम्र नहीं होती, रिटायरमेंट की उम्र होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने इसी एज में जीता और उसके बाद एटीपी मास्टर्स बहुत ही प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है, 17 का आखिरी टूर्नामेंट है और शीर्ष 8 एकल में और युगल में भी शीर्ष 8 जोड़ियां ही भाग लेती है। और यहां रोहन बोपन्ना भी करियर के अंतिम पड़ाव में है और वो बिल्कुल उस जीत के साथ विदा लेना चाहते होंगे कहीं ना कहीं,
क्योंकि ये उनका सपना है, क्योंकि अभी तक वो जीत नहीं पाए।
बिल्कुल जीत नहीं पाए, उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है युगल में, लेकिन एटीपी मास्टर्स हर बड़े खिलाड़ी का सपना होता है कि एक मास्टर्स टूर्नामेंट का जो प्रेस्टीज है, क्योंकि शीर्ष 8 खिलाड़ियों के बीच ही मुकाबला है,
अन्य 7 जोड़ियों को हराना कम नहीं होता,
वो सारे एक से बढ़कर एक होते हैं। और जो टेनिस है उसमें शीर्ष 8-10 खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं, वो मैच डे परफॉर्मेंस की ही बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक अधूरी जो ख्वाहिश है वो
ख्वाहिशों के पूरी हो जाए इस बार।
जी बिल्कुल।
और अब चर्चा करते हैं कुछ अन्य खेल खबरों पर। मोहन बगान सुपर जायंट कल शाम 7:30 बजे गच्ची बावली में जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में खेले जाने वाले इंडियन सुपर लीग 2024-25 मुकाबले में मेजबान हैदराबाद एफसी को चुनौती देंगे। आईएसएल में दोनों टीमों ने अब तक आपस में 12 मैच खेले हैं, जिनमें से हैदराबाद एफसी ने 2 मैच जीते हैं। मोहन बगान सुपर जायंट ने 5 मैच जीते हैं और 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। मस्कट में खेले जा रहे डब्ल्यूटीटी कंटेंडर 2024 टेनिस टूर्नामेंट में भारत के पायस जैन चीन के युवान लिसेन से क्वालिफाइंग राउंड में 3-11, 11-8, 11-9, 11-7 से हार गए। और श्रोताओं, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और खेलों पर चर्चा करें, तो मोना जी आप स्टूडियो में आई और हमारे साथ विस्तार से खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की टीम के साथ मुझे यानी विनय सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।